नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी शिक्षार्थियों को। और आज हम बात करेंगे मॉड्यूल से लेकर फ्लोर डेकोरेशन के बारे में और वॉल डेकोरेशन के बारे में कि क्या चीज़ किस तरीके से करी जाती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए डेकोरेशन के समय। और उससे पहले हम इसकी महत्ता को जान लेते हैं कि डेकोरेशन की उत्पत्ति कैसे हुई। आप कहीं पे अगर घूमने गए होंगे या कोई पुराने घर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़मीनों पे भी अल्पना बनी रहती है, दीवारों पे भी बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी हुई रहती है। और किसी ने अगर पुराने किले देखे होंगे तो उनमें बहुत तरह तरह के चित्र देखे होंगे, कुछ डॉट्स, कुछ लाइनें, कुछ स्क्वायर, कुछ ट्राइंगल। यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं, जब शुरुआत हुई तो एक ये कम्युनिकेशन का सिंबल से बन गया। यानी कि जब लिखाई नहीं थी, कोई किताबें नहीं थी, ये तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए अगर हम आमने सामने नहीं भी हैं तो इन चित्रों के द्वारा हम ये बता देते थे क्या रास्ता है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि किसी को रास्ता पूछना है तो आप क्या देखते हैं, फर्श के पे पदचिन्ह किस ओर जा रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये रास्ते पे पहले कोई गया है। तो सबसे पहला जो है, हम किसी भी चीज़ को सिंबल के तौर पे, सिंबल क्या करता है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। फिर धीरे धीरे संस्कृत में एक शब्द है रंगावली, वो शुरुआत इसी से हुई थी कि सिंबोलिज्म हो और उसको रंग भरे जाएं। धीरे धीरे उन सिंबल्स में रंग भरने लगे और देखने लगे रंग भर के तो इनकी कुछ सुंदरता, एक अद्भुत सुंदरता हो जाती है, फिर उसका नाम रंगोली पड़ गया। जो फर्श पे हम बनाते हैं, कुछ आकृतियों के द्वारा, कुछ चिन्हों के द्वारा, कुछ लाइनों के द्वारा, कुछ सर्किल के द्वारा जो हम आकृतियाँ बनाते हैं उनको हम रंगोली कहते हैं। और इन एवरेज ये हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट के अंतर्गत भी आती है। और इस तरीके से कहा जाता है कि बंगाल में जब ये आर्ट कहीं बनाई जाती है तो हम इसको अल्पना कहते हैं, और जब ये साउथ में बनाई जाती है तो इसको हम कोलम कहते हैं। तो लार्जली अल्पना, रंगोली, कोलम फर्श पर या ज़मीन पर, धरती पर बनाए जाने वाली सुंदर चीज़ों को, सुंदर आकृतियों को हम फ्लोर डेकोरेशन के तहत ले सकते हैं, उनको रंगोली कह सकते हैं, उनको अल्पना कह सकते हैं, और कोलम एक विशेष तौर की जो आकृतियाँ बनती हैं उनको हम ट्रेडिशनली कोलम के नाम से जानते हैं। कोलम जनरली आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका में बनाया जाता है। अल्पना जनरली वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है। और जो हम नॉर्थ इंडिया की तरफ कहें तो हम ज़मीन पर बनने वाली जो भी आकृतियाँ, डिज़ाइंस हैं, उनको हम रंगोली कहते हैं। अब आज के ज़माने में रंगोली पसंद की जाती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर घर में बनाई जाए। और क्यों बनाई जाती है तो आप ऐसे सोचिए, जहाँ रंगोली की कब याद आती है आपको, आपको याद आती है किसी फेस्टिवल पे, किसी आपकी वेडिंग सेरेमनी पे, या किसी भी ऑस्पिशियस ओकेज़न पर, सेरेमनी पर हमको रंगोली की याद आती है। अब रंगोली के लिए कुछ मटेरियल भी चाहिए होता है। मटेरियल आपका हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, और जनरली हम सादा तरीके से लें तो हम गेरू का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ज़्यादातर अगर ऑस्पिशियसली देखा जाए तो जो चावल होता है, चावल का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये जब हम किसी देवी देवता को, डेटीज़, गॉड्स, गॉडेसेस को अर्पित करते हैं तो हम इस तरीके से मानते हैं कि एक अन्न का जो है, हम सबसे पहले उनको प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। और उसके कई कई तरीके हैं कि हम उसको, चावल को पीस कर भी अल्पना बनाते हैं, वो रुकी रहती है काफ़ी दिन तक, रोज़मर्रा ख़राब नहीं होती है और ये परमानेंट जैसी हो जाती है, और उसी को हम बनाकर भी सर्व करते हैं। तो जनरली जब ऑस्पिशियस तरीके से बनाई जाती है तो चावल को भिगा के उसका पेस्ट बनाया जाता है। उसको हम अलग अलग रंगों में, किसी में केसर डाल के, किसी में हल्दी डाल के, किसी में, पहले ज़माने में इस तरीके से उसको रंगा जाता था। और काफ़ी जगहों पे अगर हरा रंग देना है तो हरी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। इवन जो चावल की हस्क है उसको जलाकर भी उसका पाउडर तैयार कर लिया जाता था, उसको भी रंगोली में इस्तेमाल किया जाता था। और आजकल रेडीमेड कलर्स भी बहुत सारे मिलते हैं रंगोली के तौर पर, उनका भी हम जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। अब हमको दो बातें और ध्यान में रखनी होती हैं कि हम किस लिए रंगोली बना रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम उस सेरेमनी को या ओकेज़न को ध्यान में रखेंगे कि कब हमें रंगोली बनानी है। तो यानी कि अगर आपके यहाँ कोई जैसे सत्यनारायण की पूजा है, दुर्गा पूजा है या दिवाली का पूजन है, इस तरीके का बनाना है तो आप अलग डिज़ाइन चुन सकते हैं, अलग स्थान चुन सकते हैं। मुझे याद है जब दिवाली पे हम लोग को बनाया जाता तो कुमायूं में हम रहते होते थे, वहाँ पर हर घर में हम पहली बार गए थे तो वहाँ पर मेन गेट से लेके पूजा स्थल तक लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते थे। और उन्होंने बहुत आसान सा तरीका चुना हुआ था कि पहले पूरी एक पट्टी बना देते थे वो लाल रंग से, जो जनरली गेरू जो होता है हमारे यहाँ, जो नॉर्थ इंडिया में गेरू जनरली बोला जाता है, कुछ और स्टेट्स में भी गेरू ही शब्द है, तो उसको बना दिया तो एक लाल पट्टी मालूम चल गई कि दरवाजे के फ्लोर के किनारे किनारे हमने बना दी। और उस पर सफ़ेद चावल से जनरली चावल पीस के बनाते थे वो लोग, तो उसको पूरे दोनों हाथों को मोड़ लिया, जैसे आधी मुट्ठी खुली मोड़ लिया वो उनके पैर हो गए और पांचों उंगलियों को उन्होंने डुबा के वो उनकी उंगलियां हो गई। तो वो ऐसा मानते थे कि लक्ष्मी जी के पैर को अगर दीपावली पे बनाते हैं तो इससे लक्ष्मी जी हमारे घर पे आती हैं। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सिम्बोलिक होते हैं जो भी डिज़ाइन चूज़ करे जाते हैं रंगोली में या अल्पना में, वो किसी के सिंबल बताते होते हैं कि ये भगवान का रूप है या किसी ये देवता का रूप है या किसी जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में इतने सारी देवी देवताओं को माना जाता है, हर लोकल एरिया में अलग डिज़ाइन होता है। आप 200 किलोमीटर दूर जाएं वहाँ भगवान का रूप अलग होगा, कहीं देवी जी का रूप अलग होगा, कहीं हनुमान जी का, वो उनको चित्र में ढाल देते हैं। और जगह पे क्या करेंगे, जब पूजा की थाली लेकेंगे उसके अंदर भी आप अल्पना जैसी बना देते हैं, कभी आटे से, कभी चावल से, कभी रंगों से। अब धीरे धीरे जब आपने ये डिज़ाइन चुन लिया है तो अलग अलग आप उसको सोचिए कि कैसे बनाया जाएगा। तो एक आसान सा तरीका होता है कि आप उसमें जगह के हिसाब से आपके पास कितना एरिया अवेलेबल है और किस जगह पे आप बना रहे हो, सकता है भाई पूजा स्थल के आप आगे आगे बना रहे हो, गेट के आप साइड में ही बना रहे हो, या आपने जो एक लैंप लगाया है उसके चारों तरफ बनाना है, तो वो सब तय करने के बाद आप उसमें डॉट डॉट लगा सकते हैं। उस डॉट लगाने के साथ साथ आप मटेरियल चुन लीजिए कि आप फूलों से अल्पना बनाना चाहते हैं या रंगोली के उससे बनाना चाहते हैं या सूखे रंगों से बनाना चाहते हैं, तो रॉ मटेरियल आप चुन लें और उसको इकट्ठा कर लें। फिर आपने जो डिज़ाइन तैयार करा है उसके अंदर भर लिए, तब आप देखेंगे कि वो आपका धीरे 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 बड़े प्रेम से, महिलाओं के साथ ये कला अधिक जुड़ी हुई दिखाई देती है और ये दर्शाती है कि वो पूरी मनोयोग से अपने देवी देवता का आगमन करती हैं और परिवार की खुशहाली के लिए, इसलिए वो रंगोली का प्रयोग भी करती हैं। तो ये हमने बात करी किन किन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ ओम लिखना है, स्वास्तिक बनाना है, चांद बनाना है या सूरज बनाना है, इवन जो लोटस बनाया जाता है यानी कि कमल का फूल जो बनाया जाता है वो भी ऐसा मान के बनाया जाता है कि वो लक्ष्मी जी का स्थान है उनको, और इसको हम तरह तरह से कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करी कि जब हम इनको चुनते हैं तो हमें डिज़ाइन चुनने में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। अब जब हमने मटेरियल चुन लिया, जब हमने डिज़ाइन चुन लिया, तो अब हम जो कलर हम दे रहे हैं तो हमें ये और ध्यान में रखना होता है कि कलर का कॉन्ट्रास्ट हो तो ज़्यादा उभर के आएगी आपकी रंगोली। वो कॉन्ट्रास्ट आपको जो, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि लाल पट्टी बना ली उसके ऊपर सफ़ेद से उन्होंने पैर बना दिए, ये बहुत प्रचलित है कि वाइट से, चूँकि राइस वाइट होता है उसको ज़्यादा कलर वगैरह नहीं करते, सीधे के सीधे हम वाइट से बनाते हैं और जब वो सूख जाता है तो बहुत उभर के आता है। कहीं पे येलो कलर का जो आगमन का जो कलर माना गया है वो पीला रंग माना गया है, ये स्वागत का कलर होता है तो वहाँ पे हम पीला इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान में रखें किस तरीके से। अब आपको बना लिया, अगर आपका सभी तो आर्टिस्ट नहीं है मगर आने वाले का स्वागत तो सभी लोग कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जो लाइनें हों वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही हों। तो ट्रेडिशनली आप देखोगे उसी तरीके का डिज़ाइन होता है जो सीधा नहीं है लाइन में, मगर ओवरऑल लुक जो होता है वो एक बैलेंस्ड और अच्छा दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि पेड़ बहुत ऊंचा जा रहा है या मून बिल्कुल ज़मीन पे ही बना दिया गया है, इस तरीके से डिज़ाइन चला जाता है, उनको फिर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। जितना आप डिज़ाइन करते जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं इस समय सुनने में कि अरे हमने वो डिज़ाइन बनाया था, हमने वहाँ पर वो डिज़ाइन देखा था, बहुत उसमें पैरट बना हुआ था, वहाँ पे जब हम गए थे तो उन्होंने दरवाजे के ऊपर गणेश जी से वेलकम किया हुआ था। कई बारी अल्पना जैसी किसी ओकेज़न पे होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे होती है तो अल्पना के तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन का थीम बना दिया जाता है, उसका नाम बना दिया जाता है, जो एक सिंबॉलिक, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा जो अल्पना या फ्लोर डेकोरेशन का जो मतलब है वो काफ़ी हद तक सिंबॉलिक रहता है कि ये इसको दर्शाता है कि अब ये है। और जनरली हम जो बनाते हैं वो इंडेक्स फिंगर और थंब को लेके धीरे 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 पूरी लाइनें बना देते हैं। अब मैं थोड़ी बातें आपको जो कोलम के बारे में बताना चाहूँगी, और इसी तरीके की महाराष्ट्र की रंगोली भी बहुत प्रचलित है और उसमें का जो विशेष कोलम का जो डिज़ाइन होता है उसमें सबसे पहले वो डॉट्स बनाते हैं, जितनी भी साइज़ में उनको चाहिए डॉट्स बनाते हैं, फिर वो इमेजिन करके कि उन डॉट्स को इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो एक मोटिव तैयार हो जाता है, फिर देख देख के उनको आ जाता है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है। तो अगर आज आपकी दादी या मम्मी ने बनाया है फिर आपको आ जाता है, फिर आपको आ जाता है, फिर धीरे 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 इसमें लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और ऐसा भी अभी नए मॉडर्न तरीके में इस तरीके से करा जाता है कि फूल भी बना दिए, पहले कलर बना दिया, वहीं पे उन्होंने दिया भी लगा दिया, कहीं आजकल वो सितारे सल में आते हैं वो भी उसके अंदर चिपका दिए जाते हैं या रख दिए जाते हैं, और एक और इससे नए, तो ये कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं। कुछ वर्ष पहले हमने देखा कि रेडीमेड बनी हुई रंगोली भी बाज़ार में मिल रही है, तो उसमें आप स्वयं भी एक, और ये तो एक ऐसा तरीका हो गया कि रंगोली बनाना आप सीख लीजिए और इसके लिए आप अपने आप घर से एक एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर सकते हैं, यानी कि रंगोली में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। जब हम यहाँ बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ एक दिन के लिए है, नहीं, इसमें आज के तरीके में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी छिपी हुई हैं। अगर आप इसकी जानकारी हासिल करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसके लिए जॉब भी ढूंढ सकते हैं, एक अपनी खूब एक टीम बना लीजिए कि जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत हो फेस्टिवल में, जैसे आजकल हम देखते हैं कि मेहंदी के डिज़ाइन जो है फेस्टिवल आते ही उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से अगर आप रंगोली का कारोबार भी बढ़ा सकती हैं, भाई आज हमारी दिवाली हो रही है, दुर्गा पूजा है, भाई थोड़ी देर आके जरा हमारी रंगोली बना दो, हमें तो टाइम नहीं है, हमें तो आती नहीं है। और मैं आपको बता रही थी रेडीमेड रंगोलीज काफ़ी होती हैं, उसमें क्या करते हैं सिर्फ एक गत्ता लेते हैं नीचे से, कोई भी पुराना कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर आपने किनारे से कोई गोटा लगाया, कोई सितारे चिपकाए, चूड़ियाँ चिपकाई, तरह तरह के जो इतने सारे मटेरियल होते हैं, चाहे जैसा आप डिज़ाइन कर लीजिए। और वो काफ़ी कॉस्टली बिकते हैं अभी, वो इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बनाए जा सकते हैं, और जैसे ही वो आप बनाने लगेंगे तो कम कॉस्ट के भी मिलेंगे और आप घर में बना के जब जब ज़रूरत हो आप तरह तरह से निकाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, उठा के
बड़े बड़े साइज़ का बना
है, चाहे बॉर्डर बनाना हो, सेंटर पीस बनाना हो, मल्टीपल पीस बना के आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर हम रंगोली अल्पना कोलम का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वो डॉट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं जनरली कि वो एक डॉट एंगल पे लगे और उसको थोड़ा सा स्पाइरल बना देते हैं, और ये उंगलियों से ही हम तैयार करते हैं जनरली, इसको बनाने के लिए कुछ और नहीं, और अधिकतर हम सिर्फ राइस फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं या राइस को भिगो के पेस्ट बनाते हैं, लिक्विड या कुछ है, और सफ़ेद होती है। अभी तो हमने एक धरती को संवारा है, चलिए मकान बना है तो दीवारें भी होंगी, तो दीवारों को भी सजाते हैं। तो दीवारों में जब अगर किसी गांव में की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में खास तौर से, तो कि वो उनके घर के बाहर जो होती है बहुत सुंदर सी रंगोली होती है, खास तौर से मिट्टी के दीवारों पर आकृतियां बनाई जाती हैं। इवन जो ईंटों की दीवार होती है उस पर सिंपल सा प्लास्टर या सिर्फ एक पुताई वाइट या कोई भी रंग है उसके ऊपर भी आकृतियां बहुत बनती हैं, और उस आकृति ही आपकी दीवार की जो आकृति होती है वो आपके घर की पहचान बन जाती है कि भाई ये कम्युनिकेशन का सबसे पहला जो है ये सिम्बॉलिक बन जाती है आपकी, कि ये इस नीले रंग का जो मोर बना था वो सो एंड सो पर्सन का घर होगा
जी बिल्कुल।
अगर ऊपर कोई मोर बना है या कोई तस्वीर बनी है कृष्ण जी की बनी है, कमल का फूल बना है, तो वो एक्स वाई जेड का घर होगा, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। दूसरे हम जो है घर के अंदर भी बहुत तरीके से करते हैं। इन जनरल जो घर के अंदर होते हैं डायरेक्टली वॉल पे पेंटिंग कम की जाती है, हालांकि कुछ बहुत घरों में आजकल इस तरीके का ट्रेंड चल गया है, या वॉलपेपर इस तरीके से लगा देते हैं, टाइल्स का इस तरीके से
स्टिकर्स भी आने लग गए हैं, जिन स्टिकर्स को लगा के आप डेकोरेट
तो वो कर सकते बना
हैं।
सकते हैं, मगर पुराने जो किले बनते थे या वहाँ पे सब आप देखेंगे आप क्यों घूमने जा रहे हैं, आपको जयपुर जाना है, क्या करेंगे जयपुर जाके, आप क्यों देखते हैं, आप देखते हैं कि उस वहाँ के किलों के अंदर कितनी सुंदर चित्रकारी है, एक एक पिलर के ऊपर, एक एक ऊपर छत के ऊपर कितनी सुंदर चित्रकारी करी हुई है, यानी कि उसको देखने में आपको कितना आनंद आता है कि उस सुंदरता को आप चाहते हैं कि बस मेरे घर में भी ऐसा ही हो, या आप हमेशा के लिए उसको आंखों में भर लेना चाहते हैं, तो उसका उतना ज़्यादा महत्व है। तो मगर कोई नहीं, आपके पास पेंटिंग्स आप बनाते हैं, आप स्वयं भी बना सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, तो पेंटिंग्स जो है एक तरीका है कि आप अपनी घर की दीवारों को सजा सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में इतनी तरह की आर्ट है, जैसे उड़ीसा का आप ले लीजिए, वहाँ पे अलग आर्ट होती है, उड़ीसा की फाइन आर्ट अलग मशहूर है, तंजौर की पेंटिंग अलग मशहूर है, मिथिला आर्ट अलग मशहूर है, और कुछ जगहों पे जो गुजरात है वहाँ पे आप देखेंगे कि घरों के में वाइट जगह बना देते हैं, उस पर डोरी चिपका के उस पर मिट्टी का लेप करते हैं और उसके बीच बीच में जो मिरर्स लगा देते हैं, तो वो एक अलग आर्ट बन जाती है। म्यूरल आर्ट यानी कि पत्थर ही फिक्स करके इस तरीके से डिज़ाइनदार बनाते हैं बड़े बड़े आंगन में या बालकनीज में, जो एक अलग से आर्ट बन जाती है, म्यूरल्स बन जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, और पेंटिंग के तरीके इस्तेमाल, वाटर पेंटिंग है, क्ले पेंटिंग है, आपकी एक्रेलिक से बनती है, ऑयल पेंटिंग है, अनेकों तरीके होते हैं, कभी आप डायरेक्टली लगाते हैं, कभी फ्रेम करके लगाते हैं, और कहाँ पर लगानी है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कौन सी जगह पे क्या पेंटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, वो क्योंकि पेंटिंग उस कमरे की आपके घर का एक स्पॉटलाइट फोकस हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आप, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की कोशिश करनी है कि जो आपके लिए एक बहुत अहम पीस है उस आर्ट का, वो आप कहाँ पर किस प्लेस में लगाए, लाइट के नीचे भी लगा सकते हैं, पैसेज में लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की है, आप किस चीज़ को अपने। और दूसरी बात है, ये जो आप घर की सजावट करते हैं, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं और चीज़ें भी हो सकती हैं, हाथ के बने हुए आपके हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स को आप ऑर्गेनाइज करके लगा सकते हैं, ये तो हो गई आपकी वॉल की चीज़ें। वॉल पे आप लाइट्स इतने सुंदर सुंदर आती हैं आजकल, आर्टिफैक्ट्स ऐसे आते हैं, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं जो किसी मेटल के या किसी सेरामिक के या वुड के केन के बने हुए जो चित्र होते हैं, या तो वो फ्रेम में होते हैं या बिना फ्रेम के भी आते हैं, जिनको आप दीवारों पे चिपका के दीवारों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं आर्टिफैक्ट्स को कई बारी आप शेल्फ में लगाते हैं, कई बारी आप कॉर्नर की साइड टेबल पर रखते हैं, सेंटर टेबल पर रखते हैं, तो ये जो सारा कुछ आप कलेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं घर सजाने के लिए हम कुछ ले लेते हैं, किसी मेले में जाते हैं कुछ ना कुछ चीज़ आपको पसंद आ जाती है, इससे हम अपना घर सजाएंगे। तो सजाना एक इतना अहम चीज़ है, किसी को भी घर जाते हैं भाई आपका घर बहुत सुंदर सजाया हुआ है और आपके यहाँ की पेंटिंग बहुत उसको याद में रह जाती है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके घर को भी सुंदरता देती हैं और घर की सुंदरता से आपका मन भी प्रसन्न होता है और मन भी प्रसन्न होता है तो आप बेहतर स्वास्थ्य भी रखते हैं। और ये जिसका घर होता है वो वहाँ की पर्सनैलिटी को डिपेक्ट करता है कि वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं कितने खुशहाल हैं, कितने वेलकम करते हैं लोगों को, उनका मन कितना निश्चल है। तो ये सब चीज़ें, चॉइस क्या है, मटेरियल क्या है, और उस चीज़ से ही आप ये भी बता सकते हैं कि सपोज कहीं पे अगर सिल्वर की कोई आइटम लगी है, कहीं पे मिट्टी से बने आइटम, दोनों ही जगह लगती हैं, तो ये सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी दर्शाते हैं। तो कई तरीके हैं कि आप अपनी जो सुंदर चीज़ों को रख रहे हैं वो किस तरीके से रख रहे हैं। और यहाँ पर भी जैसे हमने पहले बात करी थी कॉन्ट्रास्ट, लाइट, छोटे बड़े पीसेज, ऐसा नहीं कि भाई एक पीस तो आपने 8 फिट का रख दिया और दूसरा पीस जो है बिल्कुल ही 2 फिट का रह गया, तो वो हमें बड़ा एंगल्स देखने होंगे। फर्नीचर के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कलर्स के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, जो आपने कर्टेन टांगे हैं वो है, तो ये जो फर्नीचर है हमारा ये भी एक आर्टिफैक्ट का काम कर सकता है अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिश ले लेंगे किस एंगल में रखा हुआ है वो रहे। और इसके अलावा हम बात करते हैं किस तरीके से आप कुशन क्यों लगा रहे हैं। कुशन कपड़े का बना हुआ है, आप कुशन को एक से एक सुंदर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कभी उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कभी उस पर आप लेस लगाते हैं, कभी रंग बिरंगी प्रिंटिंग करते हैं, कभी पेंटिंग करते हैं और अलग अलग साइज़ के बनाते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कलर्स कॉम्बिनेशन आप सेट करते हैं। तो ये सब किस लिए, ये सब घर को सजाने का माध्यम बन जाते हैं। तो ये हम जो बात कर रहे हैं आपसे वो यही कि आप किन किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी सजावट के काम आ सकती है। अब मैं साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल घर छोटे हो गए हमारे, तो सजावट के साथ साथ अगर हम उसका प्रयोग भी कर लें, यानी कि मल्टीपर्पस
जी,
तो हमारा उसका उपयोग भी बढ़ जाएगा
जी।
हम ये जानते हैं सपोज एक कबर्ड में हमने ली है जिसमें हमें बुक्स रखनी है, तो बुक्स तो आपकी अंदर रहेंगी मगर उसका बॉर्डर में अगर आप पेंटिंग कर लेंगे थोड़ी या कोई चीज़ इस तरह से सजा लेंगे तो वो आपके लिए एक आर्टिफैक्ट का काम करेगी। उसका डोर आप बहुत सजावटी बना सकते हैं, आप जो फ्रूट बास्केट होती है वो एक सजावटी रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप सब चीज़ें खरीद के लेके आएं, हम यहाँ पर होम साइंस में साथ साथ ये बताने की ज़रूर कोशिश करते हैं और आपको चाहते हैं कि आप ये कार्य खुद करें कि आप टोकरी फैंसी है रिबन आप ऑर्डिनरी लेके आए टोकरी जिसमें आपके पास फल आए थे या आपने खुद ली थी, उसके अंदर साधारण धागे से, रंग बिरंगे धागे से, रिबन से आप कहीं पे उसको बुन दीजिए, वही आपका एक आर्टिफैक्ट का काम करती है।
बी क्रिएटर
जी
जी,
जो अभी आप बात कर रहे थे उस तरीके से आपके पास ट्रे ऑलरेडी होती है, आपने ट्रे में कुछ पेंटिंग कर दी, कुछ चिपका दी, कुछ आपका जो सजाने वाली चीज़ें हैं वो भी अनलिमिटेड हैं, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मैं बॉक्सेस हैं आपके ऑर्डिनरी बॉक्सेस में आप कोई सामान खरीद के लेके आए, आपने उसी को सजा के अंदर रख दिया और उसको ढक दिया, उसी के अंदर जो आपके उपयोगी चीज़ें भी रखी हुई हैं और आपका आर्टिफैक्ट। मुझे याद है पिछले दिनों एक एनजीओ से मुलाकात हुई थी, इन लोगों ने चूड़ियों से इकट्ठे कर करके जो पुराने जो बॉक्सेस थे, जो मिठाई के डिब्बे थे या शूज़ के डिब्बे थे, उन पर इतने खूबसूरत डिज़ाइन बना दिए थे उन्होंने और उसी को उन्होंने सेल करा था कई कई गुना दामों में। सोच भी नहीं सकते थे एक ऑर्डिनरी मिठाई का डिब्बा इतना महंगा मिल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने उसको डिज़ाइन कर दिया था। आप दिवाली पे या फेस्टिवल पे जाइए तो आपकी सजाने के लिए मटेरियल में ही इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है, तो यानी कि अब वो सिर्फ कितने किस लिए कि देखने वाले को भी सुंदर लगे और आपका मन भी खुश हो कि हम कोई चीज़ सजाने वाली दे रहे हैं, उनको देखने में सुंदर लग रही है। तो ये बात जो होती है बहुत अहम होती है और हम आपको यहाँ पे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लेसन तो है ही है आपका कि इसी में से आप रोज़गार के अवसर भी तैयार कर सकती हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, आपके क्रिएटिविटी आपके इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। तो आप चाहे उसमें फूल पत्ती बनाएं, चाहे आप नेचर से लेके कुछ एनिमल्स तैयार करें, कुछ रंगों का कॉम्बिनेशन करें, या आने वाले जो चीज़ें हैं उनमें मोती लगाएं, या कहीं पे बिनके लगाएं, कहीं पे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करें, क्रॉचेट का इस्तेमाल करें, तो ये इतनी कितनी भी गिनती करती जाऊं मैं उतनी कम है। और इससे ज़्यादा आपके पास खुद भंडार होगा। आप घर में देखिए कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, पुराने से ऊन का थोड़ा सा गोला बच गया है, थोड़े से पुराने हमारे पास कपड़े की कटिंग बची हुई है, सब मिला जुला के आप एक पेस्ट पे बना लीजिए। कोई पुराना डिब्बा उठाइए, बॉटल उठाइए, और आजकल तो प्लास्टिक की बॉटल हर एक के घर में हो जाती है, थोड़े दिन बाद पुरानी हो जाती है, उसको आप सजा लीजिए। पिछले साल का जो घड़ा बचा होगा उसको आप सजा लीजिए, फ्लावर पॉट बना लीजिए, वो आपके सेंटर में काम आ जाएगा। आपका जो बल्ब ऊपर से टंग रहा है, कोई भी चीज़ ऊपर से लेके टांग दीजिए, पुराना जो बास्केट बचा हुआ है उसको किनारे से आप बना के उसमें बीड्स टांग दीजिए, या बुन के आप टेप लगा दीजिए, वो आपका एक डेकोरेटिव आइटम बन गया। और जब आपको अपने घर के लगता है तो क्यों ना हम इसको आगे बढ़ा के अपना एक रोज़गार भी बना सकते हैं। तो ये सजाने वाली जो चीज़ें हैं, आपकी इमेजिनेशन की कोई इंतहा नहीं है, जिसको हम कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट फॉर योर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो उसको आप प्रयोग करें और इसका इस्तेमाल करें। तो आज हमने इस लेसन में तीन बातें आज पढ़ी हैं, और एक चीज़ हमने पिछली बार पढ़ी थी, ये है एस्थेटिक्स इन होम। एस्थेटिक्स का मतलब सजावट, और सिर्फ सजावट करना ही नहीं, जो देखने में भी सुंदर हो, मन को भी प्रसन्न करे, उसको हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। जिसमें हम डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहीं पर भी कुछ रख दिया मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करें तो उसको तोड़ मोड़ के आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार सीखा कि फ्लावर अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीकों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज हमने सीखा कि फ्लोर पे डेकोरेशन किस तरीके से करी जा सकती है, फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, रंगोली के रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडीमेड डिज़ाइंस भी बने आते हैं कि आप ऊपर से रंग डालिए और नीचे से आपके रंग आ जाएंगे छन के, इनका आप प्रयोग कर सकती हैं। वॉल को किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकती हैं, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करके आप डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें के लिए हमने प्रयोग करा है कि आप अपने घर को सुंदर बनाएं। और उससे पहले हमने बात करी थी घर को स्वच्छ रखें। अब स्वच्छता भी होगी, सुंदरता भी होगी, तो क्यों नहीं हमारा घर के अंदर रहने का मन करेगा, क्यों लोग आपके यहाँ नहीं आना चाहेंगे, बिल्कुल आना चाहेंगे। और आप अधिक स्वस्थ रहेंगे, आप उसके अंदर रहने वालों का भी मन प्रसन्न रहेगा, आपका भी मन में, और इन्हीं तरीकों से आप धनोपार्जन भी कर सकते हैं, आप अपने लिए एक सेटिस्फेक्शन करियर भी ढूंढ सकते हैं जो आपको संतुष्टि दे सकता है कि भाई मेरा मन करता था कि भाई कुछ क्रिएटिव है मेरा हाथ, मगर कुछ क्या करूं, इससे कैसे अर्न करा जा सकता है, मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, मेरी मदर मेरे पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते हैं। तो आपके पास तो हुनर है, जब आपने सीख लिया है तो क्यों ना घर में ही आप तरह तरह के आर्टिकल्स बना के पहले घर में दर्शाइए, जो आने वाले लोग हैं वो देखेंगे, सराहेंगे, तो आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा और आप उसी को अपना एक रोज़गार का रास्ता चुन सकती हैं।